आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने का।
नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने इनवाइट किया उसके लिए, थैंक यू।
सबसे पहले तो अब्दुल रहीम, ज़रा अपने बारे में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया कैसे आए, कब आए, कितने अरसे से हैं और क्या मसरूफियत रहीं आने के बाद?
मैं बेसिकली आईटी प्रोफेशनल हूं और इधर मैं एज अ स्टूडेंट आया था 2013 के अंदर, और मैं एडलेड में था इससे पहले, और एडलेड में मैंने मास्टर्स स्टडी किया मास्टर्स ऑफ आईसीटी मैनेजमेंट एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, और उसके बाद से मैं आईटी की फील्ड से ही मुंसलिक हूँ, और उसके अंदर पहले मैं डेल ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करता था, उसके बाद फिर मैं HP में, और आजकल मैं न्यू साउथ वेल्स में अभी रिसेंटली मूव हुआ हूँ, तकरीबन 3-4 माह हुए।
तो ये तो आपका प्रोफेशनल कैरियर हो गया, लेकिन साथ साथ में जो आपको एक मूसीकी का आपके साथ जज्बा लगा हुआ है, ये मूसीकी का किस तरीके से आगाज़ हुआ, या बड़े गुलकारों की तरह बचपन ही से शौक़ था आपको?
नहीं, बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब बचपन से ही आपके अंदर इसके जो है ना, वो जरासीम होने चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही था कि बचपन में शुरू से, मतलब स्कूल के अंदर थे तो मिली नगमे वगैरह या कौमी तराना असम्बली में पढ़ते थे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ही बताया कि आवाज़ आपकी इस काबिल है कि आप कुछ गा सकते हैं। तो बेसिकली बाकायदा गाना जो मैंने शुरू किया वो 2001 से।
तो लोगों की जब तस्दीक लोगों की तरफ से मिल गई आपको कि आप इस काबिल हैं कि गा सकते हैं, थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल में मैं भी इसकी तस्दीक करने के काबिल हो सकूंगा जब आपकी लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पे सुनेंगे अभी थोड़ी देर में। तो कोई ऐसा क्लिकिंग पॉइंट था या ऐसा कोई परफॉर्मेंस थी जिसके बाद आपको लगा कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग गुड? एनकरेजमेंट हुआ जहाँ से आपको मिला, एकदम से क्लिक हो गया?
बिल्कुल, एनकरेजमेंट बिल्कुल थी, लेकिन ये मेरा ख्याल, अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ तो दैट वाज लाइक 8th स्टैंडर्ड, एंड हमारा एक कंपटीशन था स्कूल के अंदर मिली नगमों का, तो उसके अंदर बेसिकली ये हुआ कि मेरी पोजीशन आई बेसिकली, और वो हैरानगुन तौर पर कि मतलब 2 दिन मिले मुझे तैयार करने के लिए, और मैं मतलब उसी तरह जाके बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल तैयारी नहीं थी, लेकिन उसके साथ मैंने जाके परफॉर्म किया तो मुझे उसके अंदर काफ़ी अप्रिसिएशन मिली, तो उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर ज़्यादा डेवलप हुआ, लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, तो मतलब ऑब्वियसली उस एज में बंदा ज़्यादा म्यूज़िक स्टार्ट कर रहे होते हैं, उस एज में सुन रहे हैं ये वो, तो वहाँ से बस फिर बेसिकली लोगों ने ही बताया कि आपको प्रोफेशनली भी गाना चाहिए, तो तब से अब तक जो है वो फिलहाल तो प्रैक्टिस चल रही है, गा रहे हैं अभी साथ साथ, कवर्स कर रहे हैं।
तो कुछ स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं आप, कुछ कम्युनिटी के प्रोग्रामों में जाते हैं, या इसके अलावा भी और कुछ इससे बढ़ के भी कुछ कर रहे हैं?
जी, मैं करता हूं, अभी मैं इससे बढ़ के नहीं कर सका, उसकी वजह मतलब वो ऑब्वियसली कुछ अपनी वो हैं, मसरूफियात हैं, उसकी वजह से मैं मतलब इसके अंदर प्रॉपरली म्यूज़िक के अंदर जंप नहीं कर सका, लेकिन मैं ऑफकोर्स इसको चाहूँगा कि आगे मैं इसको लेके जाऊं, और साथ मैं मतलब फिलहाल अपने गले को ट्यून इन करने के लिए मैं साथ साथ प्रैक्टिस करता रहता हूं इधर उधर, मतलब जो लोकल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं परफॉर्म वगैरह करता रहता हूं।
अच्छा, जैसे पुराने क्लासिकल फनकारों के मुताबिक सुनते हैं कि वो सुबह सादिक के वक्त सूरज निकलने से पहले और सारंगी और तबले पे बैठ के बाकायदा रियाज करते हैं, तो वो ट्रेंड तो आजकल ख़त्म होता जा रहा है, आपका रियाज करने का या प्रैक्टिस करने का क्या तरीका?
हाँ नहीं, असल में ये है कि मैंने उस तरह से सीखा नहीं है, जिसको कहते हैं कि प्रॉपर कोई क्लासिकल ट्रेनिंग हो, वो वैसी कोई नहीं है, बस एक आप किसी से आप इम्प्रेस होते हैं,
जिला देते रहे,
किसी से इम्प्रेस होते हैं, उसके साथ आप जो है उसको मतलब कंटिन्यू करते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बेसिकली इस तरह का था, मतलब मेरा कोई वो कोई उस तरह का रियाज नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स मैं अपनी प्रैक्टिस, जो मुझे गाने अच्छे लगते थे मैं उनको तैयार करता था साथ साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता जो था वो गला मैं मतलब इस तरह से अपना ट्यून इन रखता हूँ।
तो जैसा कि जब आप म्यूज़िकी बहुत सुनते हैं और शुरू के दिनों में जब आप, जिसे कहते हैं कि आप सीखने के अमल से गुजर रहे होते हैं, कौन से ऐसे गुलकार थे जिन्हें शुरू में आप सुनते थे, और क्या अब तक होते होते कुछ फ़र्क आ चुका है, आप किसी दूसरे फनकारों की तरफ ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि शुरू में तो मतलब ज़्यादा समझ नहीं होती, मतलब गाने सिर्फ एज अ गाने चल रहे होते हैं, तो मैं शुरू में आवाज़ मुझे पसंद थी सोनू निगम की, तो सोनू निगम को मैं काफ़ी सुनता था, तो एक दफ़ा मैं मतलब वहाँ पे, मैं सऊदी अरेबिया में रहता था, मैं वहाँ पे एक लोकल कम्युनिटी के इवेंट के अंदर गा रहा था, तो वहाँ एक इंडियन मेरे पास आया, उसने मुझे बताया, उसने कहा कि आपकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी से मिलती है। तो मैंने कहा कि मोहम्मद रफ़ी कौन है, तो वो हंसने लगा आगे से, वो कहता कि यार आपको मोहम्मद रफ़ी का नहीं पता। मैंने कहा नहीं। कहता ये जो सोनू निगम जो आप गाना गा रहे हो वो किसका गा रहे हो? मैंने कहा मैं सोनू निगम का गा रहा हूँ। कहता ये सोनू निगम ने सारे गाने उसके कॉपी किए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं उसके उस्ताद को सुनूंगा, बिल्कुल। तो मैं फिर उस्तादों के उस्ताद को बेसिकली जुड़ा। उसके बाद से आज तक तकरीबन मेरे ख्याल 15 साल हो चुके हैं मैं मोहम्मद रफ़ी को सुनता हूँ। उसके अलावा मैं गुलाम अली साहब और उस्ताद मेहदी हसन साहब, और उसके बाद फिर जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता था फिर आप डिफरेंट फ्लेवर सुनते हैं, तो गज़ल्स वगैरह, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, पॉप, हर चीज़ को आप फिर करते हैं, लेकिन मेरी मेन इंस्पिरेशन मोहम्मद रफ़ी साहब रहे।
अच्छा, इससे पहले कि हम फेसबुक लाइव पे जाएं, अब ये बताइए कि आप अपने आप को मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं, क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर म्यूजिक की फील्ड में कुछ अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, या पैरेलल आईटी प्रोफेशन के साथ साथ आप म्यूजिक में चलना चाहेंगे, क्योंकि म्यूजिक का कैरियर खुद भी बहुत टाइम मांगता है, लेकिन जाहिर है पहले आपके पेट सामने आता है, पहले तो उसका मामला होता है, तो आपको अपना रिस्क भी कमाना है इसमें। उस वक्त तक आपकी कमाई के दरवाजे नहीं खुलते जब तक आप वाकई किसी बड़े ऊंचे मुकाम के ऊपर ना पहुंच जाएं। तो किस तरह प्लान कर रहे हैं इसको?
नहीं, मैं अभी तो फिलहाल मतलब अपनी आईटी फील्ड के साथ जो हूँ वो उसके साथ मैं इन टच ही हूँ। उसके साथ साथ मेरा प्रोग्राम है कि मैं कोई ना कोई अपना मतलब सोलो कोई गाना वगैरह रिलीज़ करूँ, लेकिन उसके लिए मैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इधर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैं मतलब कोई अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर वगैरह कोई ढूंढ सकूँ, मतलब ऑब्वियसली हमारी टाइप का जो गाना वगैरह कर सकें, तो मैं उसके लिए पाकिस्तान जाऊँगा ऑफ कोर्स, और मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ पर कोई एटलीस्ट कोई एक आधा सॉन्ग अपनी शनाख्त के साथ निकालूं, जिससे लोग मुझे उस गाने की वजह से पहचाने, ना कि किसी की कॉपी करने वाले के।
आपने जैसा कि बड़े उस्तादों का नाम लिया है, मोहम्मद रफ़ी और मेहदी हसन का ज़माना वो था कि उस वक्त सिर्फ ऑडियो के ऊपर यानी रेडियो और के ऊपर सुन के, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ टीवी का भी ज़माना आ गया, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया का स्टॉर्म उठा है एक तूफ़ानी शक्ल में, जहाँ पे जो गुलकार है और जिसको शौक़ है वो अपनी मर्ज़ी से उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या आपने कुछ अपना सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल टाइप या वीडियो एल्बम इस तरफ कुछ बनाने का उस बारे में सोचा?
नहीं, मैं ऑफ कोर्स मेरा यूट्यूब का चैनल भी है और मेरा फेसबुक के ऊपर पेज भी है, फैन पेज है मेरा, और उसके ऊपर मतलब मेरे फैंस मुझसे रابطे में रहते हैं, मैं वहाँ पे कैजुअली रिकॉर्डिंग वगैरह करके अपलोड करता रहता हूँ, और अक्सर ही मतलब वीकेंड के ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो उस प्रैक्टिस के टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फैंस को अपने साथ रखूँ। इसी तरह फेसबुक लाइव पे चले गए और वहाँ पे जाके मतलब उनसे रिक्वेस्ट ले ली, उनके पसंदीदा गाने गा लिए। ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा वीडियोस वगैरह आप अपलोड करते हैं या ऑडियो अपलोड करते हैं तो फिर लोग उसके अकॉर्डिंगली आपको फीडबैक देते हैं, और जब आप लाइव जाते हैं जिस तरह मैं लाइव जाता हूँ तो लोग मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वाला गाना सुना दें, ये वाला सुना दें, तो आज सुबह से ऐसे ही चल रहा था।
ज़ाहिर है रेडियो और टीवी और रिकॉर्डेड सेगमेंट्स और वीडियोस, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो मीडिया के ऊपर जाती तो हैं लेकिन आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स की उसमें कमी होती है, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हर स्टेज परफॉर्म करने वाला हमेशा ये कहता है कि हमें सबसे ज़्यादा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्योंकि वहाँ पर मिलता है, तो हमें सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ आता है। आपकी स्टेज परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
नहीं, मेरी स्टेज परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और लेकिन यह है कि स्टेज परफॉर्मेंस ट्रिकी भी होती है कि आपको पहले ये जो है ना डिसाइड करना बहुत एक पूरा प्रोसीजर है कि आपने ऑडियंस को जज करना कि ऑडियंस किस किस्म की है, वो उस लेवल का शगफ रखते भी हैं उसके अंदर के नहीं रखते हैं कि आप जो गाना सुना रहे हैं बजाय इसके कि वो सिर्फ आप ही समझ रहे हैं उसको, कोई और भी ना समझ सके, तो वो बेसिकली एज ग्रुप का हिसाब लगाना, फिर उसके बाद आजकल के ट्रेंड्स का हिसाब लगाना कि आजकल लोग क्या सुन रहे हैं, किस किस्म की मौसीकी सुनते हैं, तो उस तरह जो है वो मतलब ये सारी चीज़ें फैक्टर्स जेन में रखते हुए गाना पड़ता है। और ऑफ कोर्स के लाइव का अपना मज़ा है कि जब साथ साथ ऑडियंस आपको रिस्पॉन्स दे रही होती है, तो
एंगेज हो रही है आपके,
बिल्कुल
साथ।
तो तब आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और आप अपनी परफॉर्मेंस के पीक पे होते हैं बेसिकली।
अनलेस और अनटिल कोई ऐसी सिचुएशन ऑल ऑफ सडन डेवलप ना हो जाए जिसपे आपको हूट होने का खतरा हो। कभी ऐसा भी हुआ कि आप बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके गए और कभी आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला, और कभी ऐसा हो कि आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा लेके नहीं गए मगर आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला?
बिल्कुल, ये दोनों सिचुएशन जो है ये मतलब हर आर्टिस्ट की लाइफ के अंदर आती है, और मेरे साथ ये दोनों सिचुएशंस हो चुकी हैं कि किसी दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा तैयार हुए और वो आगे उसकी हूटिंग वगैरह हुई, और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो बड़ा आपको वो मिला.
तो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी आप सीख रहे हैं इससे. क्या वो पता चलता है, जज करने में आसानी होती है आगे जाके कि क्या चीज़ लोगों के मेयार पर पूरी उतर रही है, किस चीज़ में आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है.
नहीं, वो एक और चीज़ ये कि साउंड सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर करता है, कि अगर आपका साउंड सिस्टम बेहतर है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली उसके हिसाब से चलता है, तो मतलब आपको कोई नहीं, मतलब ज़्यादा आपको ये फील नहीं होता. मेरे साथ जो मिसहैप हुआ वो लास्ट टाइम इसी तरह हुआ था कि नहीं जो जो साउंड सिस्टम था वो इतना बेहतर नहीं था कि वो म्यूज़िक और उसको साथ कैरी कर सकता मेरी आवाज़ को, तो उसकी वजह से जो है वो डिस्टर्बशन आ गई थी थोड़ी सी. तो वो ऑफ कोर्स के ये मतलब हूटिंग वाला एलिमेंट आता है, लेकिन आपको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए और उसे सीखना चाहिए बेसिकली. तो मैं हमेशा से अपनी हर परफॉर्मेंस से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मेरी हर अगली परफॉर्मेंस जो है वो पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर हो. और रह गई बात उसकी के सेकंड एक्सपीरियंस, तो ऑफ कोर्स सेकंड एक्सपीरियंस भी जो है वो मैंने मतलब हुआ है अक्सर कि कभी कभी आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद ऑडियंस वैसे सॉन्ग सुनने वाली नहीं है जैसे आप गाते हैं, लेकिन वो आपको उसका बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन भी आती है.
हम सामाइन को याद दिलाएं कि इस वक्त हम अब्दुल रहीम के साथ हैं जो मुकामी गुलकार भी हैं और आईटी प्रोफेशनल से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और इस वक्त वो हम फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं उनके साथ. और तो अब्दुल रहीम ये बताइए कि अभी तो खैर हम आपसे कुछ थोड़ा सा फ्लेवर भी जानना चाहेंगे आपकी आवाज़ का, और ये 6 सितंबर का दिन पाकिस्तानियों के लिए ख़ास दिन होता है, यौम दिफाए पाकिस्तान होता है, फिर 7 सितंबर को यौम फिजाइया होता है, तो क्यों ना कुछ इसके हवाले से थोड़ा सा कुछ आप गुनगुनाइए हमारे सामाइन को सुनाइए.
नहीं नहीं बिल्कुल ज़रूर मैं सुनाता हूँ. और ये गाना बेसिकली मिली नगमा है बेसिकली, और ये मतलब हमारे सब पाकिस्तान के लिए जिन्होंने हमारी कुर्बानियाँ दी, उन सब शहदा के लिए उनको डेडिकेटेड है, तो वो मैं सुनाता हूँ आपको. ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं. ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें वतन की फजाएं सलाम कहती हैं. ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रजाए सलाम कहती है.
اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں, اے راہ حق کے شہیدوں.
بہت شکریہ آپ کا. اور کیونکہ آج ٹاپک اس طرح سے چل رہا تھا روہنجیا کے مسلمانوں کے ساتھ, تو میرا بیسکلی سانگ سلیکشن جو تھی وہ ڈفرینٹ تھی آج کی. میرا ارادہ تھا کہ میں کوئی اور سانگ سناتا, لیکن کیونکہ وہ برما کا ٹاپک چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو مطلب اسی میں رہنے دوں. کیونکہ آف
کورس میرے خیال میں اب وہ وقت بھی آ گیا کہ میں واقعی آپ کی جو آپ کے لوگوں نے کہا تھا کہ واقعی آپ کی آواز بہت اچھی ہے, واقعی بہت اچھی طریقے سے آپ نے اسے گایا بھی, اور خاص طور پر جب کوئی اس طرح سے زیادہ کھینچنے والے گیت ہوتے ہیں جو ان سے ہی صحیح کار کا امتحان ہوتا ہے, اور جب اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی میوزک کے آلات اور موسیقی کے آلات بھی نہ ہو تو پھر آپ کی آواز کا حسن بالکل صحیح طرح سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آواز میں کتنا دم ہے. ماشاءاللہ آپ اس سارے کرائٹیریا میں پورے اترے ہیں. ویسے میں نے مذاقن کہہ رہا تھا, میں نے آپ کی آواز پہلے بھی سنی, ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے گیت اور غزلوں کا انتخاب بھی آپ کا بہت اچھا ہے, اور آپ نے جو کچھ اب تک گایا ہے اس میں آپ کی آواز کا حسن اچھی طرح نمایاں ہو رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ آپ اپنے ویڈیو البمز اور دوسرے البمز جو بنائیں گے خود سے, اس میں بھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. کچھ آسٹریلیا بھر میں نوجوان آپ کو سن رہے ہیں, آسٹریلیا سے باہر بھی آپ کو سن رہے ہیں, فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے آخر میں چلتے چلتے؟
میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو مطلب یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس خاص طور پہ ادھر آتے ہیں وہ کافی اسٹرگلنگ سچویشن کے اندر آتے ہیں, تو میرا جو سکسیس کرائٹیریا وہ یہی ہے کہ میں مطلب خود سے میں مطلب میری تربیت اس طرح کی ہے کہ میں بہت لوگوں کی ادھر ہیلپ کرتا ہوں, جو لوگ یہاں پہ نئے آتے ہیں یا جو لوگوں کو مطلب کوئی مشورے وغیرہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے, اور امیگریشن سے ریگارڈنگ کوئی ہیلپ چاہیے ہو, اسٹڈی ویزا سے ریگارڈنگ کوئی ہیلپ چاہیے ہو, تو میں ادھر کا جو ہمارا پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسیشن آسٹریلیا کا فورم ہے اس کے اوپر میں ہیلپ کرتا ہوں لوگوں کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سکسیس جو کرائٹیریا نا بین آپ کی لائف کا وہ یہ ہے کہ آپ اگر دوسروں کی ہیلپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں.
یقیناً میرے خیال میں سننے والے بھی آپ کی بات سے اتفاق کریں گے. اب چلتے چلتے ہمارے پاس ایک مہدی حسن کا ٹریک تھا, لیکن میں چاہتا ہوں اگر آپ اپنی آواز میں اس ٹریک کو اٹھائیں اور اس کے اوپر میں مہدی حسن کا وہ ٹریک چلاؤں, کیونکہ وہ آپ کے پسندیدہ گلوکاروں میں بھی ہیں. جی زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں.
چلیں ٹھیک ہے, میں ٹریک کے بغیر بھی چل جائے گا.
ہاں ٹریک نہیں, وہ میرے پاس ان کی غزل ہی موجود ہے.
اچھا ٹھیک ہے, میں وہ سناتا ہوں.
زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں,
میری جان تجھے چاہوں گا.
اور اسٹوڈیو کی گھڑیاں کہہ رہی ہیں کہ وقت قریب آ گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا, اپنے میزبان ریحان الوی کو اجازت دیجئے. ہمارے ساتھ گلوکار عبد الرحیم کی خوبصورت آواز آپ نے ابھی چلتے چلتے سنی, اور مہدی حسن کا ٹریک بھی آپ سن رہے تھے بیک گراؤنڈ میں, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اپنا خیال رکھیے گا اور اب اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ, پھر ملیں گے گر خدا لایا.